आज जो सब्जेक्ट लेकर आए हैं वो है अकाउंटेंसी और हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू टैली के बारे में। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ बनी हुई हैं मिस अंशुल खरवंदा जी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ।
हेलो लर्नर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टैली, आज हम टैली के ऊपर बात करेंगे। हम सभी अब तक ये जान गए हैं कि पहले हम जर्नल बनाते हैं, उसके बाद हम लेजर बनाते हैं और लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जो लेजर बैलेंसेस होते हैं उनसे। लेकिन अगर कुछ डिफरेंस हो गया ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं किया, अग्री नहीं किया, तो हम सब जानते हैं कि हमें उसमें कितना एनर्जी और कितना टाइम स्पेंड करना पड़ता है जिससे कि हम ये रीजन जान पाए कि ये ट्रायल बैलेंस क्यों नहीं टैली किया गया है। जब हम टैली की बात करते हैं तो टैली जो है इन सब जो प्रॉब्लम्स हैं इनके लिए एक सॉल्यूशन है। टैली में जैसे ही हम एक ट्रांजैक्शन को एंटर करते हैं, ट्रांजैक्शन अपने आप लेजर में पोस्ट हो जाता है और ट्रायल बैलेंस में भी पोस्ट हो जाता है। तो ट्रांजैक्शन जो है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस अकाउंट में भी साइमल्टेनियसली पोस्ट हो जाता है। तो अगर हम कुछ ट्रांजैक्शंस करने के बाद में ट्रायल बैलेंस या फिर बैलेंस शीट देखना चाहें तो हमें खाली कुछ कीज को क्लिक करना होता है और हम जो भी चाहते हैं देखना, जो भी हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं वो हम देख सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि टैली जो है वो हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। टैली है क्या? टैली एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसको टैली सॉल्यूशंस ने डिजाइन किया गया है और ज्यादातर जो है इसको मीडियम या फिर जो स्मॉल बिजनेसेस या फिर शॉप्स हैं वो इसको यूज करती हैं। टैली सॉफ्टवेयर मिलियंस यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे और अक्रॉस द वर्ल्ड टैली सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। टैली का टैली ईआरपी 9 का रिलीज 6.6.3 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है आज तक का। और टैली जो है एक कंप्लीट बिजनेस अकाउंटिंग या फिर इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिससे हमें जो है जो भी हमारे रिक्वायर्ड फॉर्मेट्स होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सपोर्टेड फॉर्मेट्स हों, चाहे मल्टीलिंगुअल ऑपरेशंस हों, चाहे ऑनलाइन फंक्शंस हों, या फिर स्मॉल या बिजनेस मीडियम बिजनेस हाउसेस हों, उनके लिए जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज होती हैं जो हमें करनी होती हैं वो टैली जो है उन सभी चीजों को फुलफिल करता है। सो लर्नर्स, आज का इस सेशन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम ये जानेंगे इस आज के सेशन के बाद हम जान पाएंगे कि टैली का क्या मतलब है, टैली के फीचर्स क्या हैं, इम्पॉर्टेंट स्टेप्स क्या हैं टैली को स्टार्ट करने के लिए और कैसे हम टैली को स्टार्ट करते हैं, कैसे हम उसमें कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी इन्फो क्या है और कौन सी शॉर्टकट कीज हैं जिनको हम टैली के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले टैली है क्या? जैसा कि हमने बात करी कि टैली एक सॉफ्टवेयर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको कि दुनिया भर में मिलियंस ऑफ लोग जो है उसको यूज कर रहे हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है कि जो भी हमारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको इंटीग्रेट किया जा सके और उन्हें ऑटोमेट किया जा सके। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस दिन भर एक बड़े बिजनेस हाउस में होते हैं जिसको जो सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक हो सकते हैं। तो जैसे जैसे बिजनेस जो है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है, एक्सपैंड करता है, नए कस्टमर्स के साथ हम जुड़ते जाते हैं, हम न्यू मार्केट्स में एंटर करते जाते हैं और हम नए लोगों के साथ में डील करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो कंज्यूमर्स हों या फिर हमारे क्रेडिटर्स या डेटर्स हों। तो इसलिए हमें जरूरत है कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो बहुत ही एक्यूरेट हों, अप टू डेट हों और जो इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स हैं वो भी बिल्कुल अप टू डेट हों। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसा कि टैली एक सॉफ्टवेयर है, ये हमें हेल्प करता है कि हम जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उसको एक सिंपल तरीके से, एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से हम उसको सिंप्लीफाई कर सकें, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने सब बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सुलझे हुए रूप में स्ट्रीमलाइन करके हम उनको रिकॉर्ड कर सकें। तो टैली जो है ये एक कंपनी से ज्यादा के अकाउंट्स भी साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकता है और जहां तक टैली को यूज करने की बात है, बहुत ही सिंपल है। और इसमें हम जो डाटा भी एंटर करते हैं वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में हम वो डाटा को एंटर कर सकते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन है किसी, चाहे वो किसी भी पीरियड की हो, उसको हम जो है हम देख सकते हैं जब हम देखना चाहें। अगर हम ये देखना चाहें कि इस पीरियड में कितनी सेल्स हुई है, कितने परचेज हुआ है, कोई पर्टिकुलर डेट हम डाल के देखना चाहें कि इस वीक में कितनी सेल हुई है या इन 15 डेज में कितनी हमारी परचेजेस हुई हैं, तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से हम जो देखना चाहें वो हम देख सकते हैं। अगर हम ये देखना चाहें कि हमारे पास पिछले कुछ दिनों में कितना कैश आया है, तो हम डेट्स डाल के एक डेट से दूसरी डेट के बीच में जितना कैश आया है वो हम देख सकते हैं। कितना कैश हमने खर्च किया है हम ये देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारा काम जो है वो बहुत ईजी हो जाता है। हम जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जिस भी डेट की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वो हम उससे रिट्रीव कर सकते हैं। हमारी जरूरत के हिसाब से टैली जो है वो हमें जो फाइनेंशियल पीरियड के लिए रिपोर्ट्स हैं या जो डिटेल्स हैं उसको देखते हुए रिपोर्ट जनरेट करके हमें दिखाता है। उसके अलावा अगर हम फीचर्स जाने टैली के, कि टैली के मेन फीचर्स क्या हैं, तो सबसे पहले तो टैली जो है वो प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, जैसे कि कैश बुक है, बैंक बुक है। टैली सब रजिस्टर्स मेंटेन करता है, जैसे कि परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर या फिर जर्नल रजिस्टर हो। टैली सब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हैं, जैसे हमारी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रायल बैलेंस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है जिसमें कि हम इनफ्लो कैश से हम देख सकते हैं या फिर आउटफ्लो देख सकते हैं कैश का। स्टॉक स्टेटमेंट है जिसमें हमारा इन्वेंट्री का प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है, या फिर रेशियो एनालिसिस है, ये सब हम व्यू कर सकते हैं। उसके बाद टैली जो है वो आउटस्टेशन रिपोर्ट्स भी मेंटेन करता है। उसके अलावा ये हमें बिल वाइज इंफॉर्मेशन भी देता है कि कितना हमारा अमाउंट्स रिसीवेबल है और या फिर कितने हमारे अमाउंट्स जो हैं वो पेबल हैं, और हमें पार्टी वाइज भी इंफॉर्मेशन देता है और ग्रुप वाइज भी इंफॉर्मेशन देता है। अगर हम किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए देखना चाहें कि इस पार्टी को हमें कितना पैसा देना है या इनसे कितना पैसा लेना है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी हम थ्रू टैली जनरेट कर सकते हैं। या अगर हमें स्पेसिफिक, बहुत ही स्पेसिफिक देखना है कि इस पर्टिकुलर फर्म से हमें कितना पैसा लेना है और इस लास्ट महीने में कितना लेना है, तो वो भी हमें इन्फॉर्मेशन जो है जनरेट करके हम उसे देख सकते हैं। तो टैली जो है वो हमें एक रिपोर्ट प्रोवाइड करती है एक पर्टिकुलर, जिस डेट पे भी हम चाहें पर्टिकुलर डेट पे, और या फिर किसी कोई भी हम रेंज ऑफ डेट अगर एंटर करें कि पर्टिकुलर डेट से लेके इस दूसरी डेट तक, तो वो इन्फॉर्मेशन भी टैली हमारे लिए जनरेट कर सकती है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टैली जो है वो बैंक रिकंसिलेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। सो लर्नर्स, आपने देखा कि टैली जो है वो किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है, और अकाउंटिंग, जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें हम किस तरह से टैली का यूज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम जानेंगे कि किस तरह से हमें टैली को स्टार्ट करना है, या अगर हम न्यू हैं, हमें टैली के बारे में नहीं पता है, तो किस तरह से हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें टैली जो ईआरपी लेटेस्ट वर्जन है वो हमें इंस्टॉल करना होगा, और टैली जो है उसको इंस्टॉल करने के बाद उसको सेव हो जाएगा, और जैसा जो भी उसमें प्रोसेस आपको बताया जाए वो आपको फॉलो करना होगा कि लोकेशन क्या है डाटा डायरेक्टरी की, जिससे कि इन फाइल्स को सेव किया जा सके या फिर इस प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जा सके किसी ड्राइव पे। तो टैली जो ईआरपी 9 है का लेटेस्ट वर्जन है, उसको इंस्टॉल करने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और इसमें जो स्पेस भी रिक्वायर्ड है वो 40 MB या फिर उससे कम स्पेस में ही ये जो है आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो कुछ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होती हैं टैली के लिए जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास प्रोसेसर होना चाहिए, इंटेल पेंटियम 4 हो या फिर हायर कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है। मेमोरी जो है वो कम से कम 256 MB या फिर 256 MB की रैम होनी चाहिए या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। उसके अलावा जो फ्री हार्ड डिस्क है उसकी उसमें जो स्पेस है वो कम से कम 40 MB की होनी चाहिए। उसके बाद जो मॉनिटर रेजोल्यूशन है वो रिकमेंडेड होता है कि 1024x768 pixels का हो या फिर ज्यादा का हो। तो अगर आपको टैली इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर के ऊपर तो आपको जो है आपके पास में सफिशियंट यूजर राइट्स होने चाहिए, जिससे कि आप जो भी चेंजेस वो बोलते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस में करने के लिए उसको आप कर पाएं। और आपको ये भी देखना है कि जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टैली ERP 9 को सपोर्ट करता है या जो मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है वो देता है। इसके बाद लर्नर्स क्या इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं टैली को ओपन करने के लिए, तो सबसे पहले तो आपका जो टास्क बार है उस पे स्टार्ट बटन है, आप उसको क्लिक करते हैं, एक स्टार्ट मेन्यू जो है वो अपीयर होता है। उसके बाद जो आप जो ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन है स्टार्ट मेन्यू में, उस पर आप जाते हैं, उसमें टैली ERP 9 का जो फोल्डर है उसको आप क्लिक करेंगे और जो उसमें उसका जो ऑप्शन उसको क्लिक करेंगे और फिर आप देखेंगे कि टैली ERP की जो विंडो है वो आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। अब जैसे ही विंडो आपकी स्क्रीन पे ओपन होती है, अब आप वहां देखते हैं क्योंकि अभी तक आपके पास में उसके कोई अकाउंट नहीं है, वो खाली है, तो आप उसमें एक ऑप्शन आएगा सबसे पहले कि क्रिएट कंपनी, क्योंकि अगर आपको टैली में काम करना है तो सबसे पहले आपको एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें कि आप फिर आगे और डाटा एंटर करेंगे और फिर धीरे धीरे सारे आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं वो उसमें आ जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपका कंपनी क्रिएट करने का है। तो जो फर्स्ट टर्म कंपनी है वो एक वो आप उसमें एक इंडिपेंडेंट अकाउंट जो है मेंटेन किए जा सकते हैं। ये एक कंपनी हो सकती है, एक पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, या एक इंडस्ट्री हो सकती है, या फिर एक ब्रांच ऑफिस भी हो सकता है जिसके लिए अकाउंट जो है मेंटेन किए जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से हम टैली में कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो होम पेज जो है टैली स्क्रीन का, उसमें हम क्रिएट कंपनी ऑप्शन हमें दिखेगा जो कंपनी इन्फो के अंडर में होगा। तो जब हम क्रिएट कंपनी ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल के आएगी जिसमें हम बहुत सारी आइटम्स जो है हमें स्क्रीन पे दिखेंगे, जिसमें से आपको दिखेगा कि नेम है। अब नेम में आप क्या एंटर करेंगे, नेम का मतलब है यहाँ आप कंपनी का नेम डालेंगे जिस नाम से आप कंपनी को क्रिएट करना चाहते हैं। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो मेलिंग नेम होगा। तो बाय डिफॉल्ट मेलिंग नेम जो है वो सेम होता है, जो आपने कंपनी का नाम रखा है वही जो है मेलिंग नेम भी होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो कोई और मेलिंग नेम भी आप जो है उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको आप अपनी नीड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट होगा वो एड्रेस होगा, जिसमें आप मेलिंग एड्रेस डालेंगे कंपनी का। इसमें नंबर ऑफ लाइंस जो आपको यूज करनी है उस पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना लंबा एड्रेस चाहें आप उस पर डाल सकते हैं। उसके बाद लर्नर्स जो आप नेक्स्ट देखेंगे, तो टैली में जो है अकाउंट्स दो डिफरेंट तरीके से मेंटेन किए जा सकते हैं। एक तो हम खाली अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं और दूसरा अकाउंट्स हम विद इन्वेंटरी मेंटेन कर सकते हैं। तो जब हम अकाउंट्स खाली अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो उसमें इन्वेंटरी का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन जो हमने सेकेंड ऑप्शन कहा कि जब हम अकाउंट्स को इन्वेंटरी के साथ मेंटेन करते हैं तो उसमें सारी इन्वेंटरी हमारी साथ साथ आती रहती है, कि जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं कि इतना आइटम हमने इतनी सेल्स हुई है, तो अगर हम कह रहे हैं इतनी सेल्स हुई है तो उसमें ये भी आता है कि किस यूनिट की सेल्स हुई है, किस डेट को हुई है और कौन सा मॉडल जो है वो सेल किया गया है और अब रिमेनिंग मॉडल्स कौन से हैं, फिर उतना ऑटोमेटिकली उसमें से कम होता जाएगा। एक जो दूसरा ऑप्शन है सिक्योरिटी कंट्रोल का, ये ऑप्शन सिक्योरिटी कंट्रोल हमें हमारी कंपनी को देता है, जिससे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड करता है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो भी वहां पे मांगी गई है उसको देने के बाद में, जो भी मतलब रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन उसको देने के बाद में हम एंटर प्रेस करेंगे, और जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो एक और विंडो वहां पे खुल के आती है जो हमसे कंफर्मेशन के लिए पूछती है कि आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, येस और नो। सो जब हम ओके की या फिर एंटर की को प्रेस करते हैं तो हमारी कंपनी जो है, जो हम क्रिएट करना चाहते थे, वो हम देखते हैं कि क्रिएट हो चुकी है। एक बार जब कंपनी क्रिएट हो जाती है तो हेडिंग जो है कंपनी इन्फो, उसमें कुछ ऑप्शंस हमें दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि सबसे पहला सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि हमने पहले भी बात करी कि जब हम टैली में अकाउंट्स बनाते हैं तो हम साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा कंपनी के भी अकाउंट्स उसमें बना सकते हैं। तो जिस कंपनी की ये पर्टिकुलर अकाउंट्स हम बना रहे हैं, ये यहाँ पे हमें इसमें से सेलेक्ट करनी होती है, इसलिए यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें और ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं वो शट कंपनी का होता है, अगर हम एग्जिट करना चाहते हैं या फिर हम उस डायलॉग बॉक्स से बाहर निकलना चाहते हैं, और फिर हम दूसरी कंपनी में जाके उसके अकाउंट्स देखना चाहते हैं, तो उसमें हम शट कंपनी का ऑप्शन फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन जो हम देखते हैं वो क्रिएट कंपनी का होता है, जिसको हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया है, वो उसी की तरह सेम होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम और ऑप्शंस देखते हैं उसमें ऑल्टर है, ये हमें अलाउ करता है ये ऑप्शन कि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है एग्जिस्टिंग कंपनी की, जो हमने फिल की गई है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ कंपनी, उसको हम चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तब हम वहां से चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद चेंज टैली वॉल्ट का ऑप्शन होता है, जिससे हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जब हमने एक कंपनी क्रिएट करते टाइम एक पासवर्ड जेनरेट किया था या दिया था, तो उस पासवर्ड को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो वो हम यहां से कर सकते हैं। फिर और ऑप्शंस में स्प्लिट कंपनी डाटा होता है, जिससे हम जो कंपनीज हैं उनको दो या दो से ज्यादा कंपनीज में स्प्लिट कर सकते हैं। जो भी उसके यूजर हैं, जब वो एक बार वो डाटा स्पेसिफाई कर देते हैं तो स्प्लिटिंग इजिली हो पाती है। तो जो क्लोजिंग बैलेंस होता है इस केस में, जो फर्स्ट कंपनी का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो ऑटोमेटिकली जो सेकंड कंपनी है उसका ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहां पे बैकअप या रिस्टोर ऑप्शन भी दिया रहता है, तो ये ऑप्शन जो है ये यूजर को अलाउ करता है कि वो बैकअप रख सकते हैं, अपनी लोकल हार्ड डिस्क पे रख सकते हैं या फिर किसी एक्सटर्नल मीडिया पे रख सकते हैं। तो जो बैकअप होता है एक या एक से ज्यादा कंपनी का, उसको एक सिंगल डायरेक्टरी में मेंटेन किया जा सकता है। उसके बाद लर्नर्स, इसमें कुछ शॉर्ट कीज भी होती हैं। इन शॉर्ट कीज को यूज करने के बाद हम शॉर्ट कीज क्यों यूज करते हैं, ताकि कि हमारा टाइम सेव हो। तो इसी तरह जब हम कंपनी जब हम अकाउंट्स बनाने की भी बात कर रहे हैं कंप्यूटराइज, तो इसमें भी हम कुछ शॉर्ट कीज का यूज करते हैं जिससे हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। जैसे कि F1 जो है उसको हम सेलेक्ट एंड शट कंपनीज के लिए यूज कर सकते हैं, F2 को हम डेट या पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं, F3 को हम कंपनी या कंपनी इन्फो के लिए यूज कर सकते हैं, F11 को फीचर्स के लिए और F12 को कॉन्फिगर करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो एक बार जब हमारी कंपनी क्रिएट हो जाती है टैली में, तब हम अपना जो काम है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं अकाउंट्स बनाने का। इसके बाद जो आपके डिफरेंट अकाउंट्स हैं उनको आपको क्लासिफाई करना होता है। एक बार आप सारे अकाउंट्स क्रिएट कर लेते हैं, चाहे वो पर्सनल हो या फिर इम्पर्सनल हो, उसके बाद आपका काम जो है आसान हो जाता है। वी हैव टू देन ओनली पास अ वाउचर एंट्री, हम वाउचर एंट्री को पास करते हैं, फिर उसके बाद में जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, वो ऑटोमेटिकली साथ साथ क्रिएट होती जाती है। तो और जब भी हम देखना चाहें, जब भी हमें लगता है कि देखने की जरूरत है, हम वहां से ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट जो है वो हम कभी भी चाहे हम उसको जेनरेट कर सकते हैं। सो लर्नर्स, आपने जाना कि टैली जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है जो टैली सॉल्यूशंस ने डिजाइन किया है, और मेनली इसको स्मॉल या फिर मीडियम बिजनेस हाउसेस या फिर शॉप्स यूज करती हैं। टैली एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकता है, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, कैश फ्लो। ये हमें रिपोर्ट देता है, जिस पर्टिकुलर डेट की भी हम रिपोर्ट चाहें वो रिपोर्ट ये हमें जनरेट करके देता है। सो लर्नर्स, इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग क्या हैं। तो जब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, तो किस तरह से उसका एप्लीकेशन है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो एक बहुत पॉपुलर सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन है वो तो हमारा मैनुअल सिस्टम है ही जिसमें हम बहुत सारी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, जैसे कि जर्नल है, कैश बुक है, लेजर है, स्पेशल पर्पस बुक्स हैं। और अकाउंटेंट को जरूरी है इसके लिए कि वो बहुत सारी समरीज बनाते हैं डिफरेंट ट्रांजैक्शंस की, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं जो वो मैनुअली बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारे पास डिफरेंट मशीन्स हैं जिससे हम जो डिफरेंट जो एक्टिविटीज हैं या फंक्शंस हैं उसको करने में कामयाब हैं, और खासकर अकाउंटिंग फंक्शंस, जैसे कि हम देखते हैं कि एक बिलिंग मशीन है जिसको जो कंप्यूटर की तरह काम करती है, और इससे जो है जो भी हम जो भी कंप्यूटर्स अटैच्ड होता है वो हम अगर किसी शॉप पे या मॉल में भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि खुद ही डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेती है मशीन, जो नेट टोटल है उसको ऐड कर देती है, और जो भी डाटा होता है उसको भी वो तुरंत अरेंज कर लेती है। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि जैसे बारकोड रीडर उनके पास में होते हैं तो बारकोड से जैसे ही वो कोड को स्कैन करते हैं तो तुरंत उस जो प्रोडक्ट है उसका जो कॉस्ट है वो उनकी स्क्रीन पे आ जाता है, और उन्हें मैन्युअली कॉस्ट एंटर करने की जरूरत नहीं करती, जिससे उनकी बिलिंग जो है वो फास्टर हो जाती है। सो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है उसको हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं। जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है ये डेटाबेस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है, एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जो हमें अलाउ करता है कि हम डाटा को एक्सेस कर सकें, और ये एक सिस्टम है जिससे हम जो डाटा कलेक्शन है उसको मैनेज कर सकते हैं, और सेम टाइम पे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि ये जो है एक रिलायबल है और रिलायबल सिस्टम है और कॉन्फिडेंशियल इन नेचर है। तो जब हम एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग कहते हैं तो कौन कौन सी जगह पर इसका एप्लीकेशन है? सबसे पहले तो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स जब हम प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई बिल प्रिपेयर करना है, इनवॉइस प्रिपेयर करना है, कैश मेमो प्रिपेयर करना है, तो कंप्यूटर जो है हमें इन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने में हम बहुत जल्दी हो जाता है, कंप्यूटर की मदद से हम इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं ये सभी अकाउंटिंग वाउचर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए है। तो डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस में हमको हम कंप्यूटर की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक लॉजिकल स्कीम हम यूज करते हैं कोडिफिकेशन, अकाउंट्स के कोडिफिकेशन के लिए और उनके ट्रांजैक्शन के लिए। तो हर अकाउंट या फिर जो ट्रांजैक्शन होता है उसको एक यूनिक कोड अलॉट किया जाता है, और इस कोड को अलॉट करने के बाद उसे एक अकाउंट को एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा जाता है। इस जो ये प्रोसेस है इससे जो हमारा रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का काम होता है ये बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाता है, और इसको हम आसान तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद ट्रायल बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी अभी हमने बात करी कि टैली भी एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज करते हैं, तो जब हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को तो डेटा जो है ट्रांसफर हो जाता है लेजर अकाउंट्स में, और ऑटोमेटिकली जो है कंप्यूटर से खुद ही ट्रांसफर हो जाता है, और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है जिससे कंप्यूटर जो है जो अरिथमेटिकल अकाउंट्स हैं उनकी एक्यूरेसी को चेक कर पाते हैं, और इस ट्रायल बैलेंस की मदद से कंप्यूटर्स जो है उनको वो जो है जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या जो बैलेंस शीट है वो भी प्रिपेयर कर पाते हैं। तो उसके बाद हमने ये भी जाना था जब हम टैली के बारे में डिस्कशन कर रहे थे अभी कि किस तरह से जो रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स हैं उनको हम जेनरेट कर सकते हैं जैसे जैसे हमें उसकी जरूरत हो। सो इसके बाद लर्नर्स हम बात करेंगे कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है क्या। तो सबसे पहले तो जो हमारा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है या फिर जिसको हम टीपीएस भी कहते हैं वो हम कह सकते हैं कि एक फर्स्ट स्टेज है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में। तो टीपीएस का पर्पस क्या है या जो हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है? तो पर्पस जो है इसका है कि हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकें, उसे प्रोसेस कर सकें, उसे वैलिडेट कर सकें और स्टोर कर सकें ट्रांजैक्शंस को, जिससे कि जब हमें इसको रिट्रीव करना हो इस इन्फॉर्मेशन को तो हम उसे रिट्रीव कर पाए, और जो हमारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जो हम रिट्रीव करना चाहते हैं या जिस हिसाब से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना चाहते हैं हम उसको देख पाएं। तो टीपीएस जो है कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व करता है ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने के लिए, जैसे कि सबसे पहले डेटा एंट्री होनी चाहिए, उसके बाद डेटा को वैलिडेशन होना चाहिए, डेटा को मतलब वैलिडेट किया जाता है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, रीवैलिडेशन होता है, स्टोरेज होती है, इन्फॉर्मेशन होता है और फिर रिपोर्टिंग होती है। तो एक जो सिस्टम है जिसमें खाली ह्यूमन रिसोर्स होती है उसको हम मैनुअल सिस्टम कहते हैं, और जब उसमें खाली कंप्यूटर रिसोर्सेज यूज होती हैं तो हम उसे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम कहते हैं। लेकिन जब एक सिस्टम में दोनों ही ह्यूमन और कंप्यूटर रिसोर्सेज दोनों यूज होती हैं तो हम उसे कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम कहते हैं। तो अगर हम इसको समझना चाहें तो जो एक एटीएम मशीन है ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, कि किस तरह से जो है एक ये एक फैसिलिटी है जो बैंक ने कस्टमर को के लिए दी है या कस्टमर को ऑफर की है। तो अगर हम डाटा एंट्री की बात करें तो जो प्रोसेसिंग है वो शुरू ही डाटा एंट्री से होती है। तो एक बैंक कस्टमर जो है एक एटीएम को ऑपरेट करने के लिए एक विड्रॉल करना चाहते हैं, विड्रॉल करने के लिए जाते हैं, तो जो भी एक्शंस जो है वो कस्टमर करते हैं जिसमें वो डाटा एंटर करते हैं वो डाटा एंट्री के अंतर्गत आता है, और जिसका जो प्रोसेस है वो वैलिडेशन के बाद होता है। और वैलिडेशन कैसे होगा, जो कंप्यूटराइज्ड पर्सनल बैंकिंग सिस्टम है उसके थ्रू इसको वैलिडेट किया जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो डाटा एंट्री के बाद होगा वो डाटा वैलिडेशन का होगा। जब हम कुछ भी एंटर करते हैं, जैसे कि सपोज जब हम एटीएम में अपना पिन एंटर करते हैं जो हमारा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो कंप्यूटर उसको वैलिडेट करता है। अगर हमने रॉन्ग पिन एंटर किया है तो वो हमें इंडिकेट करता है कि आपका पिन इनवैलिड है और आपको 3 और चांसेस दी जाएंगी, नहीं तो आपका जो कार्ड है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो जो एक बार जब पिन जो है वो वैलिडेट हो जाता है उसके बाद हमें कितना विड्रॉल करना है हम ये एंटर करते हैं, और जो हमें विड्रॉल करना है उसको भी टैली किया जाता है कि जो हमारी एक प्री स्पेसिफाइड लिमिट है विड्रॉल की वो उसके अंदर ही हो। ऐसा नहीं कि हमारी जो लिमिट है वो अप टू 15,000 रुपीज ही और 50,000 रुपीज एंटर करना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जो हमारी लिमिट है उसके अंदर ही हमें विड्रॉल करना होगा। फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो प्रोसेसिंग ऑफ या फिर रीवैलिडेशन होता है। तो जैसे इंस्टेंटली हम एंटर करते हैं और अपना पेन वगैरह एंटर करते हैं तो साथ साथ उसका प्रोसेस हो जाता है और उसका वैलिडेशन भी होता है, क्योंकि वो हमसे एक बार फिर से पूछता है कि आप यही अमाउंट करना चाहते हैं, डू यू वांट टू कंफर्म। फिर जब हम उसको यस करते हैं तो उसको हम रीवैलिडेट कर देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टोरेज का है। जो भी हमारे प्रोसेस्ड एक्शंस हैं जिनको हमने अभी जिसके बारे में चर्चा करी उसको जो है वो स्टोर कर लेता है। जो भी हमने विड्रॉल्स किए हैं वो एक पर्टिकुलर कस्टमर के जो भी विड्रॉल्स हैं वो जो ट्रांजैक्शन डेटाबेस होता है कंप्यूटराइज्ड पर्सनल बैंकिंग सिस्टम का, उसमें सब स्टोर होते रहते हैं, और जो भी वैलिड ट्रांजैक्शंस हैं वो स्टोर होते रहते हैं। और जब भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कई बार हमारे साथ में ऐसा भी होता है कि हम एटीएम पे जाते हैं और हमें मैसेज तो आता है कि पैसे निकल चुके हैं और लेकिन पैसे एक्चुअली हमें मिलते नहीं है, तो हम कुछ देर के लिए घबरा भी जाते हैं कि क्या हुआ है। तो इस सब चीजों से बचने के लिए जो हमारे जो डाटा है वो उसमें मेंशन रहता है जो कंप्यूटराइज पर्सनल बैंकिंग सिस्टम है, और जब हम चाहें अगर जरूरत पड़े तो हम उससे इसको टैली भी कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो इन्फॉर्मेशन है। तो जो स्टोर्ड डाटा है उसको प्रोसेस किया जाता है जिससे कि जो डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसे प्रोड्यूस किया जा सके। और जो लास्ट स्टेप है वो रिपोर्टिंग है। जो रिपोर्ट्स हम प्रिपेयर करते हैं वो जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम डिफरेंट रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा कंटेंट है वो जो हमारा डिसीजन है जो हमने लिए हैं ये सब प्रोसेसेस के लिए वो वैलिड हैं और यूजफुल रिपोर्टिंग में ऐड करते हैं। सो इसके बाद में हमें ये जानना जरूरी है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं या फिर जरूरत क्या है, हम क्यों करना चाहते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो मैनुअल अकाउंटिंग हम सभी जानते हैं कि कितना उसमें हमें पेन्स लेने पड़ते हैं कि एक एक एंट्री को हमें एक जगह से दूसरी जगह पे पोस्ट करना पड़ता है, मैनुअल इतनी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, और कहीं भी अगर एक छोटी सी भी गलती हो गई, अगर कहीं हम एक जीरो भी लगाना भूल गए तो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन को शुरू से लेकर आखिरी तक दोबारा चेक करना पड़ता है, अपनी गलती को ढूंढना पड़ता है। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है? सबसे पहले तो ट्रांजैक्शंस जो हैं, आज की जो बिजनेस यूनिट्स हैं, जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बिजनेस यूनिट्स अब खाली लोकली नहीं काम कर रही हैं, इंटरनेशनली काम कर रही हैं, हर बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता है और अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा दूर तक भेजना चाहता है। तो क्योंकि ट्रांजैक्शंस, जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो बढ़ रहे हैं, इसलिए मैनुअल अकाउंटिंग कहीं ना कहीं उन चीजों को संभालने में सक्षम नहीं है। उसके बाद इंस्टेंट रिपोर्टिंग हो जाती है। जब हम कंप्यूटराइज सिस्टम से करते हैं तो हमारी जो रिपोर्टिंग है वो बहुत क्विक होती है, क्योंकि जो कंप्यूटर की स्पीड है वो मैनुअल स्पीड से कई ज्यादा है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रिडक्शन इन पेपर वर्क। जो हम पेपर वर्क करते हैं मैनुअल सिस्टम में, इतनी मोटी मोटी बुक्स मैनेज करते हैं, जो हम लेजर अकाउंट्स और जर्नल्स प्रिपेयर करते हैं, तो जब हम कंप्यूटराइज्ड वो सब सिस्टम करते हैं तो मैन्युअली हमें किसी चीज को रखने की जरूरत नहीं पड़ती, पेपर वर्क हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है इसमें जो रिपोर्टिंग है वो फ्लेक्सिबल होती है, अगर हम कंपेयर करें मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम से, क्योंकि मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में जो हमारा रिपोर्ट्स होती हैं वो हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही हम सारे बैलेंसेस को रिवील कर पाते हैं, या फिर हम पीरियोडिक बेसिस पे करते हैं कि सिक्स मंथली हमने प्रिपेयर कर लिया या थर्ड मंथली प्रिपेयर कर लिया, या ज्यादातर हम ईयरली प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू करते हैं तो हम जब चाहे हम उस डेट्स के बीच में हम उस जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिट्रीव कर सकते हैं। दूसरा, एक ऑनलाइन फैसिलिटी है जिससे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं, और जब चाहें हम रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। दूसरा और सबसे, मतलब लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्केलेबिलिटी। जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है वो स्केलेबल है, जितनी हमारी जरूरत हो, जितने भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो, हमें कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें उसमें ट्रांजैक्शन एंटर करना है और वो ट्रांजैक्शन जो जहां जहां उसे जाना चाहिए, पोस्ट होना चाहिए, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमें मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो आई होप द लेक्चर वॉज यूजफुल और आपको समझ में आया होगा। थैंक यू लर्नर्स।